एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ।
See you.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर हमारे मनों को तैयार कर, हमारे मनों को तू खोल दे। पिता परमेश्वर विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तेरे वचन के द्वारा छू और तेरे नज़दीक ला, तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अदन में संकट। हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:15 में। यह परमेश्वर का दिया हुआ आश्वासन था, परमेश्वर का दिया हुआ यह प्रतिज्ञा था आदम और हवा के लिए कि वह आने वाले समय में उन्हें जरूर बचाएगा। हम उत्पत्ति 1:31 में पढ़ते हैं कि दुनिया के निर्माण के बाद परमेश्वर ने घोषणा की कि सब कुछ बहुत अच्छा है। हालांकि अब यह स्पष्ट है कि दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। सदियों से विभिन्न वादों और विचारधाराओं ने चीजों को सही करने की कोशिश की है। इसके बावजूद हमारी दुनिया अराजकता, असुरक्षा, हिंसा, युद्ध, प्रदूषण, उत्पीड़न और शोषण की ओर बढ़ रही है। यदि 20वीं सदी भविष्य के बारे में सभी प्रकार के आशावाद के साथ शुरू हुई और मनुष्य भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 21वीं सदी ने निश्चित रूप से उस आशावाद को खो दिया है। और अच्छे कारण से भी हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे, इसका उत्तर महान विवाद में मिलता है, जो हालांकि स्वर्ग में शुरू हुआ था लेकिन दुर्भाग्य से पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी के इतिहास में भी काफ़ी पहले आ गया। हम देखते हैं कि शैतान किस तरह से मानव स्वतंत्रता का शोषण करने के सक्षम हुआ और इस प्रकार उस विनाश को शुरू किया जिसे हम सभी आज भी अनुभव करते हैं। पतन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक बनी हुई है कि मनुष्य के रूप में हमारी एकमात्र सुरक्षा न केवल उस पर विश्वास करने में निहित है जो परमेश्वर हमें बताता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जो हमें बताता है उसका हम पालन भी करें। हम सृष्टि के समय तीन आशीर्वाद को पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे आदि माता पिता आदम और हवा को दिया जो पाप के पूर्व उन्हें प्राप्त हुई थी। सृष्टि के संदर्भ में वाक्यांश, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, उत्पत्ति 1:7 प्रकट होता है। प्रकाश के विषय में परमेश्वर यह कहता है उत्पत्ति 1:4, सुखी भूमि और समुद्र के विषय में उत्पत्ति 1:10, बीज देने वाले पौधे और फल देने वाले फलदार वृक्ष के विषय में हम उत्पत्ति 1:12 पढ़ते हैं। सूर्य, चंद्रमा और तारे परमेश्वर जब बनाए और देखा कि वह अच्छा है तो यह बात उसने कहा, यह लिखा है उत्पत्ति 1:16, मछलियों से भरा हुआ समुद्र और पक्षियों से भरा हुआ आकाश उत्पत्ति 1:21, उसके बारे में हम पाते हैं, और पशु, घरेलू पशु और रेंगने वाले जीव के विषय में परमेश्वर कहता है उत्पत्ति 1:25। अंत में जब परमेश्वर का कार्य समाप्त हो जाता है तो हमें यह वाक्य मिलता है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसे देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। यह हम पाते हैं उत्पत्ति 1:31। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर चीज को बहुत अच्छा घोषित करने के साथ साथ एक कदम आगे बढ़कर अपनी सृष्टि को तीन विशिष्ट क्षेत्रों में आशीर्वाद दिया। सबसे पहले उसने समुद्री जीवों और पक्षियों को आशीर्वाद दिया। उसने उन्हें प्रोत्साहित किया कि फूलो फलो और बढ़ो और समुद्र के जल को भर दो और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ो। उत्पत्ति 1:22 हम पढ़ते हैं। दूसरा, जब आदम और हवा को बनाया गया तो परमेश्वर ने उन्हें भी इसी तरह के प्रोत्साहन के साथ आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। उत्पत्ति 1:28, मनुष्य मछलियों और पक्षियों के साथ मिलकर फलने फूलने और गुना भाग करने के लिए ईश्वरीय प्रोत्साहन साझा करते हैं। लेकिन अंतर तब आता है जब आदम और हवा को पृथ्वी और उसके सभी प्राणियों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाती है। यहाँ हम परमेश्वर की छवि में बनाए जाने के महत्व की एक झलक देखते हैं। सृष्टिकर्ता ने हमारे पहले माता पिता को सृजित क्षेत्र को बनाए रखने और उसकी देखभाल करने के लिए उनके साथ सह अधिष्ठाता बनने के लिए आमंत्रित किया। यह हम रोमियो 8:17 भी पढ़ते हैं और इब्रानियों 1:2-3 हम पा सकते हैं। सृष्टि की कहानी में दिया गया तीसरा आशीर्वाद 7वें दिन का सब्बत है, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:3। यहाँ इस बात की और पुष्टि होती है कि लोग सिर्फ जानवर नहीं हैं, उन्हें सृष्टिकर्ता के साथ संगति का आनंद लेने के लिए बनाया गया था, जिस तरह से कोई भी अन्य प्राणी नहीं कर सकता। यहाँ हम सृष्टि में मनुष्यों को दिए गए विशेष स्थान के स्पष्ट प्रमाण देखते हैं। यीशु ने इस बिंदु पर जोर दिया, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खलिहानों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? यह हम पढ़ते हैं मत्ती 6:26, यह प्रभु यीशु मसीह का कहा गया वचन है जो कि हम पहाड़ी उपदेश में पाते हैं। अन्य प्राणियों का अवमूल्यन किए बिना उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोग पृथ्वी पर अद्वितीय और विशेष हैं। परमेश्वर ने मनुष्य, पशु और पक्षियों को भूमि से बनाने के साथ साथ, जिसे हम पाते हैं उत्पत्ति 2:7-19, स्वादिष्ट फलों वाले सुंदर वृक्षों को भी भूमि से उगने के लिए तैयार किया। या आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 2:8-9, परमेश्वर ने भूमि का एक विशेष टुकड़ा भी चुना जिसमें उसने एक बगीचा लगाया। हम केवल इसकी सुंदरता की कल्पना करने की कोशिश कर सकते हैं। आज हम जो अद्भुत उद्यान देखते हैं वे निश्चित रूप से अदन के बारे में एक स्पष्ट प्रतिबिंब हैं। अदन में इस विशेष रूप से लगाए गए बगीचे के बीच में बाकी दुनिया से अलग दो अनोखे पेड़ थे, जीवन का वृक्ष और अच्छाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। दूसरे पेड़ का फल नहीं खाना था, अन्यथा गंभीर परिणाम होते। परमेश्वर ने यह हिदायत आदम और हवा हमारे पहले माता पिता को कह दिए थे, यह हम उत्पत्ति 2:17 में पाते हैं। आइए हम उत्पत्ति 2:15-17 को पढ़ें। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ज्ञान के पेड़ को उनकी आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम का परीक्षण बनाया गया था। हम उत्पत्ति 3:1-5 में पाते हैं कि किस तरह सर्प उन्हें बहकाता है और वे पाप में गिर पड़ते हैं। किसी भी अन्य जानवर की तुलना में अधिक चालाक के रूप में यह वर्णित है। उत्पत्ति 3:1 में हम पाते हैं, हवा को धोखा देने के लिए शैतान ने यह सर्प का रूप अपनाया। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:1-5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने का फैसला किया तो उसने कहा कि वे परमेश्वर की छवि में और उसकी समानता के अनुसार बनाए जाएंगे। यह हम पाते हैं उत्पत्ति 1:26 में, प्रलोभन देने वाले के हुक पर चारा यह था कि अगर वे निषिद्ध फल खाएंगे तो वे परमेश्वर के समान बन जाएंगे। वास्तविकता यह है कि वे पहले से ही परमेश्वर के समान थे, उन्हें उसकी छवि में बनाया गया था, लेकिन दुखद तथ्य यह है कि प्रलोभन की गर्मी में वे इस पवित्र सत्य को भूल गए। वे उस फल को खाए जिसे उन्हें खाने के लिए नहीं कहा गया था। सर्प ने स्त्री को बहकाया, उसे ठगा, उसे कहा कि तू निश्चय ना मरोगे। यह हम उत्पत्ति 3:4 में पढ़ते हैं, और आइए हम उससे आगे पढ़ें। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने सर्प के रूप में स्त्री को, हवा को ठगा। उसे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास और भरोसा करना था। परमेश्वर उसे सुंदर बनाया था और परमेश्वर अपने रूप में बनाया था और उन्हें उन्नति करने के लिए बनाया था। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव, मैं 6 को पढ़ रहा हूँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, बाइबल कहती है, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। जब वे उस फल को खाए उन्हें एहसास हुआ कि वे नंगे हैं, पाप आ जाता है, उन्हें पता चलता है कि वे परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किए हैं, वे महसूस करते हैं कि वे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके परमेश्वर से दूर हो गए हैं। इसका परिणाम क्या होता है आगे, हम शायद अनंत काल में चले जाएं इससे पहले कि हम पूरी तरह से समझ पाएं कि पेड़ पर हुई उस एक घटना से कितना नुकसान हुआ। सृष्टि सप्ताह के दौरान परमेश्वर ने जो कुछ किया वह सब बिखरने लगा। परमेश्वर द्वारा स्थापित रिश्ते टूट गए। लोगों और परमेश्वर के बीच वे उससे छिप गए। एक दूसरे के बीच आदम ने अपनी परेशानी के लिए हवा को दोषी ठहराने लगा और मनुष्यों और पर्यावरण के बीच क्या होता है, सांप दुश्मन बन गया। जमीन अब कांटे और उटकटारे पैदा करने लगे और बहुत ज्यादा पसीना बहाने के बाद ही भोजन उपलब्ध कराएगी। हम इसके परिणाम को अच्छी तरह उत्पत्ति 3:10-19 में पढ़ पाते हैं। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था। आदम कहता है, आदम परमेश्वर को जवाब दे रहा है, इसलिए छिप गया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? परमेश्वर आदम और हवा को ढूंढने निकलता है। आदम और हवा के प्रति उनका प्रेम, उनका दया उसे उनके पास घींच ले आता है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आदम अपनी पत्नी हवा को अपनी स्त्री के ऊपर दोष लगाने लगा। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेली पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्यारो, यह बात हम यहाँ पाते हैं, क्या हुआ जब वे पाप किए, जब वे परमेश्वर के कहे हुए वचन का उल्लंघन किए, जो वृक्ष का फल परमेश्वर उन्हें हिदायत दिया था कि वे ना खाए, अन्यथा वे मर जाएंगे। वे लोग भूल गए और परमेश्वर के बात को छोड़ करके सर्प के बात पर हवा विश्वास की, उसके बात को सुनकर वह खा ली और कितना बड़ा नुकसान हुआ। उन्हें वहां से निकलना पड़ा। इतना ही नहीं, आदम को खट करके पसीना बहा करके रोटी कमाना था। स्त्री को गर्भवती के समय अत्यंत पीड़ा सहना पड़ेगा। यह भविष्यवाणी, यह वचन कहा गया है और प्रभु उसका पति उस पर प्रभुता करेगा, उसका लालसा अपने पति के प्रति होगा। यह सब पहले नहीं था, पाप से पहले आदम या पुरुष स्त्री के ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं, परंतु वे लोग एक बराबर बनाए गए थे कि दोनों मिलकर परमेश्वर का महिमा करे, उसका स्तुति करे और उसके लिए जिए। लेकिन सबसे बड़ा श्राप शैतान पर पड़ा जो सर्प के रूप में आया था। और यहां पर ही हम पाते हैं भाइयों प्यारों कि परमेश्वर ने उन्हें यह आशा दिया कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, उन्हें बचाने के लिए वह अपना पुत्र को भेजेगा जो कि शैतान को कुचल डालेगा, उसको हराएगा उसको नाश करेगा और उन्हें बचाएगा। वह विश्वास, वह प्रतिज्ञा किया हुआ वचन प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को दिखलाता था कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मनुष्य जाति को बचाएंगे। और यह प्रतिज्ञा पूरा हुआ हम पाते हैं इतिहास में। प्यारो, हमारे लिए यह वचन आशा देता है कि परमेश्वर हमारे गुनाह में नहीं छोड़ता है, हम पर दया करता है, हमें ढूंढने आता है और हमें बचाना चाहता है। प्यारो, हम क्या करें? हम उसके तरफ फिरे, हम अपना नज़र परमेश्वर की तरफ लगाए और उसको ग्रहण करें, उसको अपनाएं, उसके दिए हुए उपाय जो कि हमें प्रभु यीशु के द्वारा बचाने का योजना बनाया है, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू जो उसने क्रूस पर बहाए हैं, उस लहू में विश्वास करके हमारा पाप क्षमा हो सकता है, हम उद्धार पा सकते हैं, हम उसके राह में फिर से आ सकते हैं। हमें मरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर मरने के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर हमें हमेशा उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया था। आइए हम उस जीवन के आशीष को पाएं। आइए हम परमेश्वर के पास आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तू हमारे लिए महान योजना बनाया। हम आज के वचन में सुने कि मनुष्य जाति को जो तूने बनाया था, वे गलत चुनाव के द्वारा शैतान के बातों को सुन करके, भाग करके वे लोग पाप में घिरे और जिसके कारण पीड़ा, दुख और मृत्यु आई। लेकिन तू हमें वहीं पर नहीं छोड़ा पिता, तू प्रतिज्ञा किया था और प्रतिज्ञा को पूरा भी किया कि प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी पर, उसने अपना बलिदान दिया है कि हम अपने राह से पीछे, अपने राह से लौट करके आए और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करें, उसके लहू पर भरोसा करके हम पाप का क्षमा प्राप्त करें और तुझ में उद्धार पाए। पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं। मेरे हर एक श्रोताओं को आशीष दे कि वे तेरे पास आए, तुझे चुने
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।